नमः ओम नमः ओंकारं बिंदुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामगम्यं चैव ओंकारा। जय बोलो हिंसा परमो धर्म की। महानुभाव आज उत्तम संयम धर्म है। संयम एक ऐसा धर्म है, श्रमण संस्कृति के समस्त लेखकों ने मुक्त कंठ से उसकी गीत गाई है और उसके प्रति अपने प्राप्ति के लिए उन्होंने भावना और प्रकट की है कि हमें ऐसे संयम प्राप्ति हो। जिस संयम मार्ग पर आजना तीर्थंकर से लेके और आज तक जिसकी गीत गाई जा रही है, जिसका पालन किया जा रहा है, तो कबीरमल जी ने कहा है 8वें अध्याय के अंदर और 428 पृष्ठ में, बाह्य संयम साधन बिना परिणाम निर्मल न हो सके हैं। जो स्वच्छंद जो जंगलों में हाथी होते हैं तो ऊंचाई उखाड़ते फिरते रहते हैं, तो ऐसे ही ये असंयमी जीवन के प्राणियों के लिए बिना परिणाम निर्मल वो नहीं कर सकते जब तक वो संयम धारण नहीं। एक आचार्य ने कहा कि मैं चारों तरफ बाढ़ लें तो फसल खत्म हो जाएगी, खा जाएंगे, कोई भी जानवर घुस गया और इसीलिए उसके रक्षा के लिए बाढ़ लगाते हैं। तो संयम एक तरह से बाढ़, आप लोग शुद्ध हवा आने के लिए खिड़की खोल रखते हैं और आंधी तूफान आके वो यदि वो छत को उड़ा ले जाए तो वो किस काम की, तो इससे पहले बंद कर लेते हैं। तो इसी तरह से जैसे श्वासोच्छ्वास एक जीवन के लिए आवश्यक है तो संयम भी जीवन के लिए आवश्यक है। कौनमल जी ने तो ये बताया कि यह निर्मल परिणाम नहीं हो सकते जब तक कि संयम धारण है। और इसी तरह से आपके जो बनारस दास जी नाटक समय साल के रहे, उन्होंने कह दिया ज्ञान कला जिनके घट जागी ते जग माही सहज वेरा, ज्ञानी मगन विशेष सुख माही यह विपरीत संभव है ना। ज्ञान भी हो और असंयमी हो तो दोनों बात एक तलवार में दो मान नहीं फेर सकते। जिनके रहे में ज्ञान कला का उन्मेष असली हो गया है वे लोग संसार में सहज वैराग्य प्राप्त कर लेते, क्योंकि ज्ञानी हो और विषय सुखों में रुचि ले रहे, यह विपरीत बात संभव नहीं हो सकती। कैसे हो सकती है कि नमक या तो इमली और दूध ये दोनों नहीं मिल सकते, फाड़ देंगे दूध को, पानी तो मिल गया उसके साथ दोस्ती कर ले दूध बिल्कुल ठीक है आओ मेरे को, ये जो है गर्म होने के बाद बाहर कूदने से तुम बचा सकते हमारे अंदर आओ, वो तो अपने समा लो पानी को बोले आओ हमारे तुम्हारे तरल जाति एक ही है शीतलता है, परंतु उसमें इमली का पानी मिला दे तो वो फाड़ दे। तो जो इंद्रियों के द्वारा भोगो भोग वस्तु है उसको पार थोड़ टुकड़े कर डाले, परिणाम निर्मल नहीं हो सकते, कैसे हो सकते। तो इसलिए परिणामों की निर्मलता के लिए, परिशुद्ध निर्मल परिणामों के लिए संयम एक आधारशिला है। तिलों को जब तक निष्पीड़ित नहीं करते हैं तो तेल नहीं निकलते, तो बिना संयम के जीवन ऊंचा नहीं उठ सकता। इसी प्रकार के जो संयम है हमारे तीर्थंकरों ने गीतराज भगवान ने जो बताया और फिर उसके जो टोडरमल जी जैसे ने ये कह दिया बाह्य संयम साधन बिना परिणाम निर्मल न हो सके हैं। पाद ने कहा कि लो कि विया दुष्करो धर्म फलम चाश्य श्रद्धा, ये जो चारित्र है धर्म ये बड़ा दुष्कर है, इसलिए श्रद्धा से काम चलाओ। उन्हें कहा नहीं कि आपादान कारक ही इसका संबंध होने के कारण पंचमी भक्ति दुख में, जैसे आप लोग छड़ाना पड़ते समय कहते हैं दुख ते भयवन, तो इसी प्रकार से पंचमी विभक्ति के अंदर ये बता दिया आपादानम यतो ये थी आवस्तेज भयम यथा अपादानी पंचमी सात। पंचमी विभक्ति के अंदर वह उन दुखों के चीजों से वो पृथक कर देता है, बोलते के साथ ये पांचों इंद्रियों को दुख देने वाले होने के कारण आत्मा को मलिन बना देने वाले से उससे वो पृथक कर देता है। भय शब्द का प्रयोग किया उस पंचमी विभक्ति के अंदर, तो इसलिए कहते हैं कि श्रद्धाएं नहीं उसके साथ संयम आवश्यक है। वही ध्रुव बुद्धि कहा उसको, कौन सी ध्रुव बुद्धि, जो संयम के साथ है वह ध्रुव बुद्धि है, नहीं तो वह ध्रुव बुद्धि है अध्रुव बुद्धि है, कैसे शाश्वत हो सकता है। पात्र अच्छा हो उसमें वो चीज अच्छी रहेगी, इसलिए संयम सबसे बड़ी श्रेष्ठ चीज है। और बिना संयम के ये भी सत्य है कि स्वरूपाचरण चारित्र प्राप्ति नहीं हो सकती। यदि कोई ऐसे ही कह दे अप्रमाण भूत बातें तो कोई दुनिया के अंदर नहीं मान सकता। देखिए हम पहले छोटे छोटे जो ग्रंथ है हमारे अपने सारभूत ऋषि को देख ली, इन्होंने तो कह दिया भैया ज्ञानी हो और विपरीत कैसे हो सकता है संयम बिना, इन्होंने कहा भैया निर्मल परिणाम नहीं हो सकते। अब आप दौलत राम जी की भी बात सुनिए, वो कहते हैं यो है सकल संयम चरित, सुनिए अब स्वरूपाचरण, सुनिए स्वरूपाचरण अब जिस हो तो प्रकटे आप निधि मिटे पर की प्रवृत्ति सब। उन्होंने कहा अब तक तो मैं सकल संयम का वर्णन कर लिया, अब आप स्वरूपाचरण चारित्र सुनिए। ये नहीं कहा कि भैया स्वरूपाचरण हो जाएगा और फिर सकल संयम हो जाएगा, ये तो उल्टी गंगा बह जाएगी। उन्होंने कह दिया कि तप तपे बाघ से धरे वृष दशे रत्नत्र से वे सदा मुनि सात में वा एक विचरे जहे नहीं भव सुख कदा, यो है सकल संयम चरित, सुनिए स्वरूपाचरण अब, अर्थात सातवें गुणस्थान से स्वरूपाचरण चरित्र शुरू हो जाता है। नहीं तो यह कहने की जरूरत क्या थी, पहले स्वरूपाचरण का वर्णन करते और फिर सकल संयम का वर्णन करते, और उसी स्वरूपाचरण चारित्र के वो जो बताते हुए कहते हैं आगे स्वरूपाचरण चारित्र क्या है, जिन परम सुबुद दारी अंतर भेदिया वर्णादि अनुराग आदि ते निज भाव को नारा किया, निज माही निज के हितु निज कर आपको आपे गयो गुण गुणी ज्ञाता ज्ञान दे मझार कछु भेद न रहो। तो इसीलिए दौलत राम जी ने कहा, अपने पेट्रोल निर्मल जी ने कहा बाह्य संयम साधन बिना परिणाम निर्मल न हो सके, बिना बाह्य संयम के पालन किए क्या नहीं हो सकता है, परिणाम निर्मल नहीं हो सकता। तो इसलिए मानभाव परिणामों को निर्मल करने के लिए संयम ये सबसे बड़ी आवश्यक चीज है, और स्वरूप आचरण चारित्र सात्यमी होगा, उससे पहले उपचार से शब्द का प्रयोग आचरण ने जरूर कर दिया। और तो उपचार शब्द का अर्थ व्याकरण में क्या होता है, व्यवहार, और वह व्यवहार क्या है, मिथ्या है। उपचार से उपचार तो उपचार है अपने आप में, पढ़िए आप आपके संस्कृत व्याकरण हलायुर कोश अमर कोश, उपचार शब्द का अर्थ उपचार ही है, उपचार कर देना। तो इस तरह से कि बात यह है कि स्वरूपाचरण जो है वो सकल संयम चैत्र के बाद, संयम से पूर्व से कोई स्वरूपाचरण की बात कहे तो असंभव है, नहीं हो सकता है, त्रिकाल में भी नहीं हो सकता है। तो फिर ये आप मिला लीजिए कि बाह्य संयम साधन बिना परिणाम निर्मल ना हो सके, पर इसका अर्थ यह नहीं कि बाह्य संयम जो पालन करे उनके परिणाम निर्मल ही होंगे, पर परिणामों की निर्मलता बाह्य संयम ये एक सिक्के के दो पहलू, एक सिक्का है रुपया तो वह इधर भी होगा तो इधर भी होगा, ये नहीं कि एक तरफ है और एक तरफ है ही नहीं, बाह्य संयम हो गया तो अंतर होंगे, ये मत समझना कि एकांत मिथ्यात्म, न व्यवहारी भाषी बनना है न मिथ्यावासी बनना है, ये याद रखो। जैसे ही व्यवहारी भाषी व्यवहारने वाला मिथ्या दृष्टि, वैसे निश्चयाभासी में निश्चयने वाला भी मिथ्या दृष्टि, हमारे यहां दो पहलू शादास्ती शादना साथ साथ चलेंगे दोनों पहलू, एक नहीं चल सकता, आज
आगे है तो पीछे भी है, ऊपर है तो नीचे है, दोनों पहले एक साथ चलेंगे। इसलिए यहां कहते हैं जो संयम के बिना नहीं चल सकता है। महानुभाव, बहुत से लोग संयम का, जो बच्चे हैं नौजवान हमारे, अरे क्या रखा है रात को खाने में पीने में, ये सब तो जमाना बदल गया, अब तो फैशन हो गया। फैशन के नाम से भी अभी आगरा में एक कन्या देखने के लिए कुछ लोग गए, अमेरिका से पढ़ के आए थे, तो लड़का गया, जाने के बाद उससे बातचीत करा, भैया देख लो तुम पसंद करते हैं क्या, बातचीत करने की परिपाटी पहले भी रही अब भी रही, बीच में नहीं रही। तो उन्होंने कहा साहब, उस लड़की ने पूछा तुम शराब पीते हो, मैं तो शराब तो प्याज नहीं खाता हूं, बोले मुझे नहीं शादी करना, बोले क्यों तुम तो पुराने आदमी हो। लड़की ने कहा, लड़के ने नहीं, लोग कहते साहब लड़का बिगड़ गया, या तो लड़की की बात चल रही। और अच्छे किसके, जैन परिवार की लड़की, उसके माँ बाप बोले कि साहब हम तो अच्छे घर से शादी कर रहे थे, इसने हमारा सारा बर्बाद कर दिया, इसको हम पढ़ाई पढ़ने वहां भेजा, अब आप कुछ तो यहाँ उपदेश दे दो, कोई जाप दे दो, मैं जपूं और वो ठीक हो जाए। उसकी माँ कह रही थी मेरे पास आके, दो दिन फेरी भी हुआ और शादी नहीं हो जाए, रब मैं शादी करवा दू, सत्काय जीव हनन ते। महानुभाव, अभी पाटोजी जी ने रास्ते में कहा महाराज जी, और धूप किरने जो है वो दिन में गिरना चाहिए रात में नहीं। मैंने कहा सत्काय जीवन के हनन की बात है उसमें, और वो अग्नि में धूप डाल दो। मैं ये कह सकता हूँ कि रात को नहीं खिलाना चाहिए, पर ये नहीं कह सकता हूँ कि दिन में खिलाना चाहिए, तो खिलाना चाहिए तो रात को धूप का प्रयोग नहीं करना चाहिए, अग्नि में नहीं डालना चाहिए, ये तो निषेधात्मक तो कह सकते हैं, पर विधियात्मक मैं नहीं कह सकता हूं, क्योंकि सत्काय जीव हनन थे उसमें की अग्नि का जीव भी आ गया। मैं उनको समझा के आ रहा था, बड़े कठिन है हमारे लिए, तो समझा ना, सत्काय जीव हनन थे, ये दीक्षा के समय ये बात आचार्य मंत्र के साथ हमें विधि के साथ देते हैं, तो इसलिए स्वरूपाचरण चारित्र जो है, देखिए श्रोतागण भी संयमी देखे जाते हैं। अब देखिए बड़ा बैठे दो घंटे छात्र जम के सुनते हैं, पर वक्ता जब स्टेज पर पानी पीने लगता है रात को रो भी या दिन में कहीं भी, बोले सुना, बोले क्या इनको व्याख्यान के लिए बुलाया हमने, बोले व्याख्यान कर रहे हैं, टेबल पर से वो ग्लास उठाया और पी लिया और फिर पढ़ने लगे। वक्ता दो घंटे संयम नहीं पालन कर सकता और श्रोता दो घंटे वहां संयम पालन कर रहा है, ये कैसे मेल बैठे बताओ। महानुभाव, जो इंग्लैंड में कॉमनवेल्थ सभा है उसकी किताब हमने देखी कि दंड है यदि सिगरेट पी लिया और पानी पी लिया कॉमनवेल्थ सभा। तो हमारे यहां जो आशाधना बताया कि मंदिर में पैर लंबे चौड़े करके बैठना, वह खाना खाना पानी पीना, या कोई अभिनय की बात करना, शास्त्र के समय पानी पी लेना, शास्त्र पढ़ने बैठेगी और यहां पानी पी रही और छोटा संयम से बैठा हुआ, यह कैसे हो सकता है। वक्ता कभी भी असंयमी नहीं हो सकता, उसको संयम पालन करना पड़ेगा, चाहे वो थोड़ा पाले या ज्यादा पाले, संयम पालना जरूरी है, नहीं तो पंडित हमारे दौलत राम जी और इसी प्रकार से और विद्वानों ने जो गीत गाई है तो वो गीत गीत है, चाहे कितना भी हो वो संयम संयमी है, इसलिए संयम के मुख से जो शोभा देगी वो असंयमी के मुख से। मैं दिल्ली में था जब हमारे विद्वान गोपालदास बरे जी की शताब्दी थी, कुछ विद्वानों ने कहा प्रार्थना करके आप समय सार पद बोले, क्यों बोले कि आपसे मुख से अच्छी लगी, आप संयमी, हम प्रार्थना करने आए दो बार आए। तो कहने का तात्पर्य मैंने कहा कि वो समय सार पहले मैं उतार को लियो जिससे कि मैं दूसरे को सुना सकूं, सुनाना आसान है उसको पालन करना बड़ा कठिन है, समझे ना। बेटा कोई मुंह में सिगरेट रखे और बाप और बेटे से, बेटा ही बहुत खराब है, बोले खराब है तो तुम क्यों नहीं छोड़ते हो, हमारे यहां तो ऐसी ऐसी चीज है, पिता ने कहा बेटा एक चाबी ले लो हम जा रहे हैं, कहां, बोले हम तो त्याग ले रहे हैं, क्यों, बोले संसार खराब है, जो खराब है वो मुझे क्यों दे रहे पिताजी। तो बाप से बेटा पहले वैराग्य होके चला गया, संयम ही हो गया। तो महानुभाव, संयम का हमारे यहां होड़ था और वो संयम अंतरंग और बहिरंगी दोनों साथ था, इसीलिए धम्मो मंगलम किट्टम अहिंसा संयमो तमो, अहिंसा के साथ संयम और तप ये भी चलते, देवादि तत्व प्रण, इसीलिए देव देवेंद्र ने भी उनके चरण स्पर्श कर लिया और ऋग्वेद में कहा, क्या कहा, इंद्रो मुनिनाम सखा, इंद्र जो था वह मुनि का वृषभ देव का सखा था, साथ साथ चलता रहा हर बातों में, इसीलिए उसने वृषभ देव तीर्थंकर का सुमेरु पर्वत पर पुरु नाम रखा,
और इसलिए जिनसेन आचार्य ने कहा कि पुरोहित नाम जो है कि इंद्र का नाम इसीलिए हो, तो साथ साथ रहो सकावन के, वो उनके सानिध्य के, उनके चरण सानिध्य, तो इसलिए मानभाव संयम बहुत श्रेष्ठ है। राष्ट्र के हित में, समाज के हित में, संस्कृति के हित में, नेताओं के हित में, सबके। जब महात्मा गांधी भी द्वितीय गोलमेज परिषद में गए तो रास्ते में स्विट्जरलैंड उतरे, सेलेसोर पियेरे नाम का विश्व नागरिक संगठन संस्था का अध्यक्ष वृद्ध था, बहुत अच्छा आदमी, खान पान रहन सहन सभी उसके लिए। गांधी जी का स्वागत करके बिठाया। उन्होंने कहा, गांधी जी मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही। बोले, क्या? ये बताओ मुझे कि एक नेता बनना है तो उसके पास क्या गुण चाहिए? तो वहां बैठे थे, उन्होंने कहा, साहब आप लोग कहो, इनसे जवाब दे दो। मदन मोहन मालवीय और भी जो साथी थे उनसे कहा कि आप जो भी थे उनके साथ। उन्होंने कहा, साहब हम तो गांधी जी इसके बारे में तो बोल नहीं सकते, हम बोलेंगे सच बोलना चाहिए तो वो बोलेगा सीलवान भी होना चाहिए, लंबी लिस्ट चालू होगी, अनवस्था दोष आएगा, आप ही जवाब दे दो साहब, ये तो बड़ा कठिन दिखता है। गांधी जी ने कहा, बहिरंग में संयम और अंतरंग में प्रत्येक क्षण में परमात्मा का स्मरण, ये दो गुण जिसमें है बोले वही नेता बनने का लायक है, अन्यथा नेता बनना। तो सेलेसोर पियेरे आगे प्रश्न ही नहीं पूछा। जो भी त्याग है लौकिक में भी और उसमें जो दृढ़ता से के साथ सुमेर पर्वत से रहना, ये आसान भी काम। गांधी जी से कहा, सूट बीट पहन के आओ। उन्होंने कहा, मैं नहीं, इसी ड्रेस में अपने सिद्धांत पर कट्टर रहे, सिद्धांत पर दृढ़ रहे। तो आज उसी धर्म में जन्मने वाले लोग हैं, थोड़े से किसी ने कहा साहब ये फैशन है तो बस उस फैशन में भागे, चाहिए पीओ कहीं भी खाओ, म्यूनसिपालिटी का डिब्बा बना दिया उसने मुंह को, तो म्यूनसिपालिटी का डिब्बा बोले कहा, वहां पार्टी में गई थी, यहां पार्टी में गई थे। इसलिए हमारा धर्म, हमारी संस्कृति इस देश में जो चिरस्थाई आज तक टिकी वो संयम के कारण टिकी, और ये संयम जो है आधारशिला है। जैसे कि आप फाउंडेशन पहले मकान का रखते हैं उसके बाद बिल्डिंग बनती है, तो ये संयम जो है हमारे सारे धर्म के अंग को और परिपुष्ट करने के लिए कारण होने के कारण, आप घर में रहिए कहीं भी रहिए, संयम परम आवश्यक है। वह संयम के अनेक भेद है, प्रभेद है। तो मैं अब गाथा पढ़ के आपको ये सुनाऊं कि इसीलिए तो ये जो सुगंध दशमी के दिन भी जो आपको संयम की शिक्षा तो बताई, उन्होंने कहा भैया रात को मत खिलाओ, अर्थात संयम से पालन करो, दिन में बात सुनो उनकी, रात को मत खिलाओ तो संयम हो गए होते, वो भी संयम में आता है, संयम पालन करो। जब अपन ने दुआ कर दे, शास्त्रों में देखिए बड़ा सूक्ष्म है, मंदिर में घंटी बांधी है, रात को घंटी मत बजाओ कहते हैं, उसमें कोई एक आधा केला बैठा हो तो उसको भी तकलीफ हो जाए। क्या बात है, मान भाव मंदिर की जो घंटे में भी इतना बड़ा प्रबल निमित्त आशाधर सूर्य ने औरों ने माना है, पूज्य पाद ने क्या, अरे बोले कि जब श्रृंगारात्मक कोई झंकार सुनने को शब्द मिलते हैं तो राग उत्पन्न होता है, और प्रातःकाल मीठी नींद में आप जब आंखें खोल के अभी उठना चाह रहे हैं और मंदिर की घंटा बजती है, वीतराग भगवान अनंत नाम आता है, वो वीतराग भाव पैदा कर दे तो ये सराग पैदा कर दे, जब सराग पैदा करने की ताकत सड़क पर के उन झंकारों के अंदर, उन श्रृंगार में, उन नाच गान में है, तो ये वीतराग भाव क्यों नहीं पैदा कर सकता? कितनी बड़ी बात, अर्थात मंदिर के अंदर बजने वाली जो घंटा है प्रातःकाल, वो भी मंगलमय वातावरण तैयार करने वाला होने के कारण, तो रात को उसको बजाने में मना किया। तो ये धूप का भी संयम पालना आप लोगों को, महिलाओं को, पुरुषों को करना चाहिए। बोले साहब आप देर से क्यों आए? बोले काम था। अर्थात जो निकम्मा आदमी है वही रात को आना, ऐसे अर्थ हो गया? तो हमारा ऐसे नहीं, जो आप धर्म को प्रथम स्थान देना चाहिए, आपका कोई भी काम हो। तो ये अमेरिका में मुझे जो भी लोग आए, फ्रांस से आए, उन लोगों ने बताया साहब इतवार के दिन वो चर्च में जरूर हाजिर हो जाते, चाहे सुप्रीम कोर्ट का जज भी हो। अभी जब दीदी गोल में अपने इसमें विश्व धर्म सम्मेलन में गए थे, वहां बेल्जियम में 800 साल पुराना वहां चर्च था, हमारे भट्टाराय जी का भाषण रखा, 800 प्रतिनिधि इकट्ठा हुए थे, उसमें सुप्रीम कोर्ट के जज मंत्री लोग सब आए थे, एम उपाध्याय भी थे, उनका भाषण हुआ और उसके बाद सभा समाप्त हुई। तो इतवार के दिन उनके यहां ये मानकर, और यहां हमारे आजकल के बच्चे दो चार अक्षर पढ़ लिए ABCD, पहले तो शराब के दुकान के सामने रहना तो शर्म लेते थे, आगे पीछे देखते होटल के सामने खड़े होने, अब तो मंदिर के सामने शर्माने लगे। ये इस कलयुग का महात्म, और फिर माँ बाप मेरा बेटा बहुत पढ़ा लिखा हो गया, यूनिवर्सिटी पढ़ लिया, बहुत पढ़ा लिखा हो गया, उस बात उसको पढ़ना चाहिए, चाहे वो किसी भी व्यसनों में डूब जाए और आत्मा बर्बाद हो जाए। तो मान भाव गांधी जी ने गांधी विचार भवन किताब में लिखा है, ज्यादा ज्ञान की जरूरत है, थोड़ा ज्ञान कोई संयमी हो उसके पास विद्या देन करो, और बहुत बड़ा विद्वान और असंयमी हो बोले तुम्हारा जीवन बर्बाद हो जाए। गांधी विचार भवन किताब पढ़ी आप, सभी भाषाओं में मिलती है, कितना सुंदर वाक्य लिखा। ज्ञान का कोई मूल्य नहीं जिसके साथ संयम नहीं हो। तो अब सुनिए क्या कहते हैं, संयम जनन तम पाविल जो छंदई पुन मूलन शोभम भवावली नर मरणावली किम पावे सो पुन सगे संयम पंचेन्द्री दंडन संयम विकसाय हिंदनो संयम दुर्दर तव धारण संयम रस चाय निवार। उत्तम संयम धर्म, उत्तम संयम धर्म मनुष्यों को दुर्लभ है, मनुष्य भाव में बहुत दुर्लभ, मनुष्य भाव भी मिल गया पर संयम बहुत दुर्लभ, उत्तरोत्तर दुर्लभ है। यदि पुण्य परिणाम से भी किसी को मनुष्य भाव प्राप्ति भी हो जाए तो पर भी पीछे छोड़ दिया तो मूढ़मति है, संयम को छोड़ दिया उसने पाला नहीं तो मूढ़मति। ऐसा व्यक्ति भवावली में अनेक जन्म चक्र में परिभ्रमण करता रहता है तथा जरा मरण को प्राप्त होता रहता है, क्या वह पुण्य एवं सुगति को पा सके और संयम नहीं पा सके तो क्या पा सके, सब पा लिया वैभव यदि संयम नहीं पाया तो जीवन जरूरत। पंचेंद्रियों को दंडित करना, यहां पंचेंद्रियों को दंडित बोले तो उनको सीमित कर देना। कुछ किताब ने तो यहां तक लिखा कि सरवार सिद्धि में यदि कोई पाप करता है तो राजा दंड देता है, इसी के लौकिक में जब दंड है तो ये पारमार्थिक में कितना बड़ा उसमें दंड होना चाहिए, इससे आप सोच के और संयम पालन करिए। लौकिक में कोई चोरी करता है या पांच पाप में से कोई तो उसको दंड हो जाता है, तो इसे स्पष्ट सिद्ध होता है कि लोक में भी जब संयम है शासन में तो धर्म में संयम का कौन वर्णन कर सकता है, बृहस्पति भी 1000 जवाब माना नहीं कर सकते। कषाय खंडन करने से, दुर्गत तप करने से और कषाय क्रोध मान माया लोभ जो अनंतानुबंधी है ये अनंत संसार को बढ़ाने वाले हैं, इसलिए इनको भी खंडन कर देना चाहिए अर्थात इनका नाश कर देना चाहिए। और दुर्गत जो घोर तप है वह तभी तप सच हो सकता है जब संयम और कषाय इन दोनों को जीत लिया जाए। और इसी प्रकार से जो जवान है शग्रत है उनमें से दृढ़ता के साथ जो आसक्ति है वो भी असंयम बनाने वाला है। उपवास जो है वो मन को चपलता को रोकने वाला, नियंत्रित करने से काय क्लेश जो है वो बहिरंग और अंतरंग दोनों संयमों को उत्तम बना देने वाले होने के कारण अपने जवान का भी स्वाद को और छोड़ देना चाहिए। त्रस्त स्थावर जीवों की रक्षा के संयम होती अपने यहां 7 प्रतिक्रमण बताए हैं, इरापति दैवसी रात्रि पाक्षिक चतुर्मासिक संवत्सरी और उत्तमार्थी जयधौला में इसकी चर्चा। इनमें इरापति को बहुत महत्व है, उनमें का सब मूल यही है सबसे श्रेष्ठ का, इसमें सारे आ जाते हैं। उत्तमार्थी जो संलेखना के पूर्व 3 आर त्याग किया जल रख लिया उस समय वो उत्तमार्थी प्रतिगुण, सांवत्सरिक आषाढ़ शुद्ध प्रतिपदा के दिन के बताया, और रात मिलेगी दोष प्रातःकाल प्रातःकाल मिलेगी संध्याकाल। 7 प्रतिक्रमण में उन्होंने कहा कि इरापति बहुत है, क्यों सत्काल जीवनों की रक्षा उसमें तत्काल, जैसे कि भी कोई थोड़ा सा लग गया तो और वही पानी से आपने धो लिया, और ये तो है पहले वो लग जाए फिर बाद में धो, 15 दिन महीने भर के बाद आप लोग धोना, और ये तो भैया सवेरे का सवेरे झाड़ू शाम को शाम झाड़ू मारते हैं तो वो भी प्रतिक्रमण है, वो भी घर की सफाई प्रतिक्रमण है, झाड़ू मार के सफाई करते हैं, या अंतरंग में झाड़ू सवेरे भी शाम भी मारना पड़े ये भी प्रतिक्रमण है। सफाई तो घर की सफाई तो अंतरंग दिल की भी सफाई होना बहुत आवश्यक है। तो यहां पर कहते हैं इन षटका जीवों के रक्षा के लिए संयम जो है बहुत श्रेष्ठ है, कृमि कीटक जीव जंतु देख के इनको चलो। सूत्रों के शास्त्रों के अर्थ का परिज्ञान से संयम पालन होता है, मानवाओ जो शास्त्र में बताई हुई जो सूत्र है और उसका अर्थ का परिज्ञान है ये संयम साधन में सबसे बड़ा। क्यों उपास कैसे करना क्यों करना इससे क्या लाभ है इन सब शास्त्रों से तो ज्ञान होगा, जैसे रस्सी पकड़ के आदमी ऊपर चढ़ता है तो सूत्र को पकड़ के वो सिद्धालय पहुंच सकता है, परंतु पकड़ के का मतलब उसका परिज्ञान करना, उसका पालन करना, यह अर्थ उसका है। योगों की चपलता का नियंत्रण में संयम, जो मन वचन का है कि इनकी चंचलता है कि जो भाव संसार है पंच संसार के अंदर परिच्छन्न आत्मा में जो होने का मूल कारण मन वचन का है, इनको संयम ही नियंत्रण में ला सकते। और इसी प्रकार से निरुद्देश जो गमनागमन है उसका निरोध भी संयम से होता है। अनुकंपा में, अनुकंपा शब्द का भी प्रयोग है, परमार्थ के चिंतन में संयम का निवास है। जहां दया है वो दयावान आदमी है, जिसके पास दया नहीं है तो वो असंयम हो कि कहीं भी किसी कोई मर जाए, जीव कुछ भी हो जाए, इसे रहती है। पर जो दयावान होगा वो संयम ही होगा, जिसके पास दया नहीं वो संयम नहीं दे सकता। अनुकंपा, इस प्रकार संयम सम्यक दर्शन ज्ञान को पुष्ट करता है। दर्शन ज्ञान को पुष्ट कोई कर सकता है, जैसे बोलते कि डॉक्टर साहब मैं दुबला बहुत हो रहा हूं, बोले क्या, बोले टॉनिंग पी लो, बोले संयम टॉनिंग है। कौन से पुष्ट करने के लिए, ज्ञान और दर्शन को पुष्ट करने। इसीलिए पूज्यपाद ने बार बार कहा सम्यक्त्व वर्धनी क्रिया है, भगवान की पूजा दर्शन इत्यादि जो भी आपकी क्रिया है क्षणावश्यक ग्रस्तों की, वो सम्यक दर्शन को अभिवृद्धि कराने, सम्यक्त वर्धनी क्रिया पूजा के साथ उन्होंने ये लगा दिया। और इसलिए कि संयम पालना आवश्यक, अतः यह मोक्ष का मार्ग है। संयम जो है ये मोक्ष का मार्ग है। इसीलिए कोडमल जी ने कहा कि भैया चतुर्थ गुणस्थान में मोक्ष मार्ग उपचार से कहा, जब तक संयम पालन में मोक्ष मार्ग शुरुआत नहीं हो जाता। टिकट खरीद लिया तो गाड़ी में डिब्बे में नहीं मिले और गाड़ी नहीं चली तो होने कैसे मार्ग बन सकता। मार्ग पकड़ लिया, टिकट जेब में रखा और कोई प्लेटफॉर्म पर सो गया बेंच पर, अरे गाड़ी आ गई कहां जाना, बोले अमुक जाना है मुझे दिल्ली, बोले ये दिल्ली की तो गाड़ी है, बोले गाड़ी कहां जाएगी, बोले क्यों, टिकट मेरी जेब में है। ऐसे नहीं होता, जेब में टिकट रख के और कोई सो जाए तो जहां से वही रहेगा। इसलिए आचार्य कहते हैं कि संयम भी बहुत आवश्यक है। इसलिए महानुभाव और अनेक तरह के संयम शास्त्र में वर्णन किया है, और खान पान के विषय में संयम सबसे बड़े नौजवानों से मुझे अवश्य कहना है, बोले उपवास करो, बोले हमें सिर दर्द होता है चाय पे बिना उपवास नहीं होता है, ये महिलाओं का सहसा तकरार रहता है। बोले महाराज जी कोई नहीं, हमें चाय की थोड़ी इजाजत दे दे, हम उपवास कर लेंगे। अब शास्त्रों में तो कहीं चाय की विधि नहीं है, अब इनके लिए स्वतंत्र शास्त्र को रचना की नहीं जा सकती, नहीं इच्छा से कोई कही जा सकती, भगवान की वाणी तो वाणी है। तो इसलिए अपने कमजोरी के लिए हम शास्त्र को या विधि को नहीं बदल सकते। तो इसलिए मानना हो कि मनुष्य जो है इन वस्तुओं का गुलाम होते जा रहा है, और वो वस्तु के गुलाम जो है संयम के लिए क्या बतावे कि मन का गुलाम हो जाए, मन जिधर चाहे उसको नियंत्रण नहीं रह सकता। असंयमी जो है जैसे मन स्वच्छंद जा रहा है इसी प्रकार से जाता है। इसलिए मन को और कंट्रोल में लाने के लिए संयम बहुत बड़ा आवश्यक है। संयम इतनी सी बात है कि ब्रेक, बिना कार के एक्सीडेंट नहीं हो जाए इसलिए ब्रेक रखा है, और बिना ब्रेक की गाड़ी जाए तो एक्सीडेंट जरूर हो, तो इसलिए संयम ब्रेक है। बिना ब्रेक के कोई ढलान लग जाए और ब्रेक फेल हो जाए तो अंदर बैठे हुए जो है उसका भी हार्ट फेल हो जाए। यदि ड्राइवर कह दिए सेठ साहब बोले क्या हो गया, बोले ब्रेक फेल हो गया, अरे बोले कि मेरा क्या होगा फिर। तो इसलिए मान भाव संयम ये ब्रेक है और जीवन में बहुत आवश्यक है, चाहे तो वो कहीं भी घर में रहे कहीं भी रहे, बिना संयम के हो नहीं सकता। इसलिए आप अपने से संयम पर नहीं हो सकते, जम सकते तम के रे कुमकुंडा चाहेगा कि जितना आप कर सकते उतना करो, नहीं कर सकते उस पर विश्वास रखो, पर उसका निंदा मत करो, ये नियम सार है। और इसी प्रकार से अष्टावक्र, गांधी जी की शताब्दी निमित्त एक जीवन चरित्र छपी हुई है, लोगों ने बहुत वर्णन किया, हरिद्वार जाना चाहिए इसलिए गए, और वो जाने में देरी हुई तो रात को 12 बजे पहुंचे। 12 बजे लाइन से वहां पंडित लोग सब खाना खाने बैठे थे। गांधी जी ने कहा कि मैं यहां नहीं आना चाहिए था, बोली यहां गंगा पवित्र है उसके किनारे भी ये पाप 12 बजे खाना, दिन में खाने में क्या पकड़ा था, बोली मुझे आना नहीं चाहिए, आ गया तो कोई नहीं कोई पुण्य कमा के, क्या पुण्य कमाओ, बोले ठीक है आज से मैं रात को खाना छोड़ देता और बाकी चीजें खाऊंगा। कि उत्तर प्रदेश सरकार ने उनकी एक किताब छपाई रात को नहीं खाने की और संयमी जीवन का, रात को खाना न खाने की उन्होंने प्रतिज्ञा करके और वहां चले, और उसके 30 साल के बाद फिर लिखा है क्या कि मैंने जो खाना रात को छोड़ दिया तो अनेक रोगों से बच गया। ये उनके आत्मविश्वास की बात बताओ, अनेक रोगों से बच गया। और फिर संयम के लिए कि वो अपने पहले खाने की जो नीम की पत्ते की चटनी है वो चख लेते पहले। बोले क्यों? बोले मैं जवान को संयम की शिक्षा दूंगा। बोले स्वाद में मत भूल जी जाना, तो हमारे प्रवचन सार के कुमकुंदाचार्य ने कहा है गृद्धता खाने की चीजों में है हे साधु, तो बोले कि तेरे जो वो भोजन पाप बंध का कारण बन जाए। तुमने खा भी लिया और उसमें आसक्ति नहीं है, बोले तेरे को उपवास का फल है। बताओ दिन में आपने खा लिया अच्छी चीजें भक्ष्य का विवेक रखते भी, और रात को नहीं खाया, छह महीने का उपवास का फल, चार साल कितनी बड़ी बात है, फोकट नहीं, कोई तपस्या नहीं करनी पड़ी, खाना खाए सवेरे सूरज उगने के बाद शाम तक, और आपने भक्ष्य पदार्थ को और रात को नहीं खाया, छह महीने उपवास का फल। लोग बोलते साहब बहुत धर्म कठिन है, तो सरवार सिद्धि में कहा, बोले असंयम लोग हमेशा ऐसे कहते रहे। बोले साहब धर्म कठिन है, ये सूत्र भी सरवार सिद्धि की टीका में दी है, इसलिए छोड़ रहे। बोले क्यों? बोले कठिन है, तो इसलिए बोलते कि नहीं, रात को छह महीने का उपवास का फल मिलता है, एक साल के अंदर रात को नहीं खाया तो नहीं जाता। तो मान भाव तो मुझे एक ही कहना है, प्रवचन तो आप सुनते ही रहते हैं, आज मन में संकल्प करके आप ऐसे संयम ले लीजिए कि मैं रात को नहीं खाऊंगा और अपनी चीजें नियमित रखूंगा, परिग्रह भी बहरंगी साहब में 10 कपड़े 20 कपड़े, कोई ना कोई संयम पालन करो, नियम पालन करो, इस संयम से आपके आत्मा की उन्नति होगी। और मनुष्य जो जितना संयम अच्छे से अच्छे पालेगा वो दार्शनिक बनेगा, धर्मात्मा बनेगा, और जिसमें पालन नहीं है उसका खंडन मत करो, पाप के बंद हो जाए। बिल्कुल पाप का आपसे पालन नहीं होता, इसलिए बोले इसमें क्या रखा है, तो आपकी बातों में क्या रखा है। तो ऐसे नहीं, जम सकते कम के लिए, जितना होता उतना करो, जो नहीं होता उस पर श्रद्धा रखो तो सम्यक दर्शन आपका मलिन नहीं होगा। और यदि आप पालन नहीं कर सकते और उस संयम का निंदा करते हो तो आपका सम्यक दर्शन भी मलिन हो जाएगा। इतना ही कहकर संक्षिप्त में आज मैं यही कहूं, जो स्वरूपाचरण चरित्र बताया वो आप ख्याल रखना कि यो है सकल संयम चरित्र, सुनिए स्वरूपाचरण अब। अब स्वरूपाचरण चरित्र आपकी शुरू होगी, उससे पहले स्वरूपाचरण चरित्र नहीं हो। जो सिद्धांत है हम अपनी इच्छा के अनुसार उसको कोई भी अर्थ नहीं कर सकते। याका तत्व विनाच विपरीता निस्संदेह वेदे, आगम को पढ़ना आसान नहीं है। याका तत्व एक थोड़ा बढ़ा दो 81 16 पंच, कम कर दो तो 79 हो जाएगा, 16 पंच 80 होगा बाप। तो इसी शास्त्रों में नियम है कि जितना अर्थ है उतना ही। अपने लिए नीचे बैठ के कोई कह दे भी अब हम यही है, हम भी फिर कह दें कि हम भी 14 13 गुणस्थान के हैं। आप लोग कहते भरत जी धर्मी वैरागी, हम भी कह देंगे साहब हम भी तो विंध्याचल के वैरागी बाहुबली जैसे हम, तो आप मान लोगे क्यों नहीं मान। तो कहने से कुछ नहीं होता है, भरत जी घर में वैरागी ये तो एक औसिक शक्ति होते भी है, पूर्ण शक्ति नहीं। आप आके भरत जी घर में थे, कितने बड़े संयमी थे, रत्नाकर ने वर्णन किया, राज्यसभा में बैठे बैठे वही अपने मन में मगन होंगे, क्या संयम उनका वर्णन कोई वर्णन कर सकते हैं। देखिए जब वो आहार दान के लिए अपने महल के बाहर आए, सारे ड्रेस उतार दिया और धोती दुपट्टा सादा पहन लिया, रत्नाकर का कहना है। बोले क्यों गरीब? बोले उसके सामने कितना भी वही हो पहन के खड़े रहो, जिसके पास कुछ परिग्री नहीं है तो उस पर कोई प्रभाव पड़ना तो ही नहीं। तो सारे वही उन्होंने उतार के और सादे ड्रेस में चले गए, खड़े रहे, कोई मलिराज दिखाई नहीं दे रहे, इधर देखा उधर देखा, घोड़े दौड़वाए कोई मिले नहीं। बोले आज अष्टमी पंचमी चतुर्दशी फिर क्या हुआ? इतने में दो मुनिराज चारण रिश्तेदार उतर रहे थे तो उसने पड़का दी और पड़का के अंदर ले गए राजमहल। राजमहल बहुत बड़ा, सीढ़ी चढ़ो उतरो इधर जाओ इधर जाओ। तो बीच में उन्होंने मुनि महाराज जी से दोनों से कहा, महाराज मेरा राजमहल ये इतना टेढ़ा है तो संसार कितना टेढ़ा होगा, संसार राजमहल इतना टेढ़ा है तो मेरा मन कितना टेढ़ा होगा, पर आपके चरण पड़ने से आज संसार महल मकान मेरा दिल सब सीधा होगा। विरोध करते ही जा रहे बुरे। उसके बाद आहार दिया, आहार देने के बाद ग्रास देते समय रखा करने लिखा है, देते समय जब रखा और मुनि महाराज ने चखा, महाराज जिनको आत्मा का स्वरूपार्चन चारित्र का स्वाद है उनके लिए क्या स्वाद कीमती है, ये कुछ भी नहीं है, ये तो शरीर पोषण मात्र है। जिनको आत्मा का स्वाद, ये हमारे जैसे संसारियों के लिए ये स्वाद का हम लोग ये करते हैं, ऐसे कैसे कैसे बड़े धर्म ध्यान के साथ आहारदान दिया। आहारदान के बाद उनके महिलाओं ने संगीत गाया, छोड़ने चले। जब छोड़ने चले गए और दोनों कमंडलों, बोले कि भैया यहां छोड़ दो, हम तब जाएंगे बोले और थोड़ा करके कम उन लोगों ने दे दिए। जब तक दिखाई देते रहे तब तक रत्नाकर ने लिखा है, बोले किस दिन मेरा भी ऐसे ये समय आएगा कि मैं भी ये सब छोड़ दूं। उदास मन से घर लौटे, खाना खाने बैठे, खाना खाते खाते मुनिराज जब याद आ गए तो आंख मीच के मुंह में ग्रास, हाथ में ग्रास थाली में रखा। तो भरोसे वाले उनकी पत्नी ने कहा कि क्या बात, आज रात को ठीक नींद लेगी, खाना किस खाना खाते समय नींद नहीं लेनी चाहिए। बोले नहीं मैं नींद नहीं ले रहा, फिर क्या कर रहे, मैं आत्मा को समझा रहा था ज्ञानामृतम भोजन में, आत्मा ये खाना तेरे लिए नहीं है, तेरे लिए तो ज्ञानामृत भोजन है, ये तो शरीर के लिए करो, मैं आत्मा को समझा रहा था कि वो कहीं स्वाद में डूब नहीं जाए। तो भैया भरत चक्रवर्ती का बाप जो है घर में बैरागी, यौन ही बैरागी नहीं है वो, तो बहुत इनके जीवन की घटनाओं का रत्नाकर ने जो वर्णन किया है जिसका वर्णन हम लोग नहीं कर सकते। तो मुझे घर में बैरागी आप बनो, बनना चाहिए, इसमें कोई संशय नहीं, यदि घर में रहते भी आप बन जाए तीनों प्रतिष्ठ मुनि गई तदा याद यदि भावम, जो तीसरे सामायिक व्रत पालन करने वाला उस संयमी ग्रस्त के लिए आप समुद्र द्रवी उन्हें का चेलों की दृष्ट मुनि कपड़े से ढका मुनि है। बोले कैसे, बोले संयम त्रिकाल समय खान पान की नियत, बोले मैं दिन में खाऊंगा इतने दो बार लूंगा, एक बार लूंगा, ये नहीं कि शास्त्र की गद्दी पर बैठ के भी कोई पानी पी ले, स्टेज पर पी ले और फिर कहे कि भी आत्मा आत्मा परिचा, संयम आवश्यक है। तभी स्वरूपाचरण चरित्र नमो नमो अरहंतानम, नमो नमो सिद्धानम, नमो नमो ऐरियाणम, नमो नमो उवझायाणम, नमो नमो सर्वसाऊणम, नमो नमो अरहंतानम। ह्रीं श्री उत्तम संयम धर्मांगाय नमः। ओम ह्रीं श्री उत्तम संयम धर्मांगाय नमः। ओम ह्रीं श्री उत्तम संयम धर्मांगाय नमः।